बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत सफ़। सूरत सफ़ क्या है? सफ़े बांधना। उम्मत मुस्लिमा को दिन में 5 बार सिखाया गया, जिसमें मैसेज क्या है कि हर मुसलमान एक ईंट है और इस ईंट को दूसरे से जोड़ने वाला मसाला उल्फत और मोहब्बत है, जो मुसलमान को मुसलमानों से होनी चाहिए। एक इस तरह का खूबसूरत मुआशरा कायम हो कि जैसे एक इमारत बनती है, कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आसमानों और जमीन में है, और वो गालिब और हकीम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ए लोगो, जो ईमान लाए हो, तुम वो बातें क्यों कहते हो जिस पर अमल नहीं करते? अल्लाह के नज़दीक ये सख्त नापसंदीदा हरकत है। तुम कहो वो बात जो करते नहीं। अल्लाह को तो पसंद वो लोग हैं जो इसकी राह में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया के एक सीसा पिलाई हुई दीवार है। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत आयत है। कौल और फेल के तजाद से बचाया। क्यों कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह अगर अल्लाह को इलाह नहीं मानते, कारसाज नहीं मानते, खालिक नहीं मानते, मालिक नहीं मानते? क्यों कहते हो या का नाबुदू जबकि उसकी बंदगी नहीं करते, नफ्स की करते हो, माशरे की करते हो? क्यों कहते हो या का नस्तईन जबकि मदद के वक्त दस्तगीर और गौस और कुतब और दाता किसी और को मान लेते हो? क्यों कहते हो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अगर रसूल की सुन्नतों से तुमको प्यार नहीं? असल में डंडा जा रहा है इस आयत में उन मुसलमानों को जिनकी जुबान की नोक पे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रहता है, लेकिन जिनका अमल उसकी गवाही नहीं देता। और यही आज उम्मत मुस्लिमा का रोना है। सिर्फ जुबान से बात करते हैं, अमल से बात करेंगे तो हालात बदलेंगे। दूसरी बात, आपने देखा यहाँ एक सीसा पिलाई दीवार की बात है। उम्मत मुस्लिमा को दिन में 5 बार नमाजों में सफ बंदी करके सिखा दिया कि यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, और एक इमाम को आपके सामने खड़ा करके उसके पीछे वो खड़ा है तो खड़े हैं, वो झुका तो झुके, वो सजदे में गया तो सजदे में, हत्ता के कहा कि जिसने इमाम से पहले जानबूझ के सर उठा लिया सजदे से तो उसका सर गोया के गधे का सर बन जाएगा। इतनी अकल ही नहीं है उसको, खुद बड़ा बनने लगा। इस तरह की खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन सिखाई। अब ये छोटी सी साफ बढ़ती जाएगी जिंदगी के हर मैदान में, और मुसलमानों को एक काम करने के एक ऑर्गेनाइजेशन का जो वो फ्लोर चार्ट कह लीजिए या जो उनका प्लान है ना, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, वो दिखा दिया। एक इमाम जो तुम में से सबसे समझदार, अकलमंद, पढ़ा हुआ, कुरान सीखा हुआ, अल्लाह से डरने वाला हो, उसको अपना लीडर बनाओ। फिर उसमें एतमाद भी करो, शक ना करो, और उसके बाद पीछे सफ़ों की सफ़ें, हर एक अपनी सलाहियतों के मुताबिक उसमें पीछे लगे। जब मुसलमान इस निज़ाम को अपनाते हैं, अल्लाह ताला मुसलमानों को फ़ायदा देता है। और इसके बरक्स आप वही निज़ाम बनाएं, हर 5 साल बाद आप चेहरा बदल देते हैं, पहली हुकूमत पिछली हुकूमत को गालियां देती रहती है, पिछलों के मंसूबे आखाक में गए, अगले और बनाते हैं, सारी ज़िंदगी रुल रुल के गुजार देंगे। 60-70 साल तो हो गए, आज तक सिर्फ लीडरशिप ही ना मिल सकी, लीडर का काम कहाँ होगा? हर मुसलमान को दूसरे के साथ जुड़ना है, और इसमें मुझे और आपको भी एक जिम्मेदारी मिलती है कि आपको इस्लाम की इस इमारत में एक वो ईंट बनना है जो अपने हिस्से का काम करे। आप इस स्कूल की बिल्डिंग को इमेजिनेशन में लाइए, बाहर फ्रंट भी है, पार्किंग लॉट भी है, ये डोर भी है, सीलिंग भी है। हो सकता है कुछ सालों बाद इसकी सीलिंग्स बदलने की नौबत आ जाए, पॉसिबल है ना? ये सारे बल्ब खराब हो जाए, ट्यूब्स बदली जाए, ये तो रिप्लेस होती रहेंगी, लेकिन क्या इस बिल्डिंग की बुनियादें कभी बदलेंगी? नहीं बदलेंगी। वो बदलेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। बस मुसलमान जब दीन की बुनियादें बन जाते हैं ना, सिक्योर हो जाते हैं। सहाबा की जो इतनी शान है ना, उसकी वजह क्या है कि वो इस्लाम की बुनियादों में चले गए। ऊपर कई दफा रेनोवेशन हुई लेकिन उनका अजर कम ना हुआ। इसी तरह आज के दौर में मुझे और आपको नए सिरे से इस्लाम की बुनियादें बनना, क्योंकि इस वक्त दोबारा इस्लाम पे जवाल है, दोबारा वही दौरे जाहिलियत है जो कि अल्लाह के नबी से पहले था। तो दुआ कीजिए मैं कहीं खप जाऊं। इमारत बनती है ना तो जो ईंटें लगने में लग गई वो सिक्योर है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ ईंटें बच जाती है ना बाद में बिल्डिंग्स बनते हुए, तो वो किधर होती है? दो ईंटों को रख के तो मजदूर चूल्हा बना के उस पर काली सी पतीली रख के चाय बना रहे होते हैं, कुछ ईंटों को बच्चे विकटें बना के क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ठोकरों में रुल जाते हैं वो मुसलमान जो रुले में आज, जो किसी ऐसी बिल्डिंग का हिस्सा नहीं बनते जहाँ ऑर्गेनाइज होके काम हो रहा है। अपने सर अपने मुंह दीन का काम करना बहुत आसान है। आज ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको जो बात समझे अपने नाम के साथ जोड़कर एक गिरोह बनाए, एक इदारा बनाए, एक मस्जिद बनाए और उम्मत परेशान है करें क्या। उधर जाते हैं वो कुछ कहता है, किसी को कुछ कुछ। आज दोबारा इस सारी ईंटों को जमा करें। अच्छा लोगों को क्या लगता है, फ्रंट पे रहना, मुझे शीशा बनाए ताकि मैं इमारत के शुरू में रहूं, लोगों को मेरे काम दिखे और ये और वो। एक बच्चे का फुटबॉल खेलते हुए बॉल लगेगा ना तो आप टूट जाएंगे। बहुत अनसिक्योर लोग हैं जो दीन के काम करते हुए फ्रंट डेस्क पे बैठे होते हैं, और मेरे जैसे लोग जो सबसे सामने सबसे नुमाया बैठे, सबसे ज्यादा खतरे में मैं हूं। अल्लाह ना करे इस कमरे में कोई दाखिल हो, गोली चलाए, सबसे पहले मेरे सीने पे लगेगी। नीचे रहकर दबना आसान है। सेल्फ प्रोजेक्शन वाले लोग दीन का काम नहीं करते। मुझे कोई नाम दो, कोई ओहदा दो, कोई ऑनर दो, और इस पे हम बहुत सारे सेशंस करते हैं। अभी आने से भी पहले मैंने कुछ दिन पहले कर, हमने इधर भी सूरज सब की तिलावत शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक मीटिंग की थी। तो सूरज सब का मैसेज ये है, ऑर्गेनाइज होकर मिलकर एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनकर दीन के काम करो और अपनी खूबियों को पहचानो। किधर लगना है मुझे, बस वहां लग जाए। अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कोई बड़ा काम किया कि छोटा किया, बस आपसे आपकी सलाहियतों का पूछेगा। इल्म देना आता है, इल्म दे दो। बच्चों को सेट करना आता है, बच्चे देख लो। अगर तुम्हें ऑफिस वर्क आता है, ऑफिस का काम कर लो। कंप्यूटर चलाना आता है, कंप्यूटर को लगा दो। आज मुसलमानों का स्किल्ड तबका अपने आप को दीन की खिदमत के लिए चाहे पार्ट टाइम पेश कर दे, इस्लाम पे बाहर आने लग जाएगी। आज इस्लाम का पौधा जो मुरझाया हुआ ना, वो यह है कि स्किल्स वालों ने तो सारों ने लग कर लिया, वो तो पार्ट टाइम भी जॉब ही करेंगे अपनी असल जॉब के बाद, कुछ और माल बन जाए। और दीन के काम पे रह गए वही बेचारे जो रुलते खुलते, जिनको कोई नहीं कबूल करता, कहते हैं चलो अल्लाह तो हमारा है ना। तो अल्लाह तो सबका ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस्लाम का मिजाज समझने की जरूरत है इस वक्त। और अल्लाह ताला हमें ऐसी ईंट बना ले जो कभी ना निकले और हमेशा इस रास्ते में लगते रहे। और याद करो मूसा की वो बात जिसने अपनी कौम से कही थी, मेरी कौम के लोगों तुम मुझे क्यों अजियत देते हो, हालांकि तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। फिर जब उन्होंने टेढ़े इख्तियार की तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए। हाईलाइट करें, क्रुकेडनेस और टेढ़पन का आगाज इंसानों की तरफ से होता है, फिर अल्लाह दिल टेढ़े करते हैं। आज उम्मत के दिल क्यों टेढ़े हुए हैं, क्योंकि दीनदारों के दिल टेढ़े हैं, एक दूसरे से नफरत है। और अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। पहले मूसा की बात की जो ओल्डेस्ट रिलीजन को इस वक्त प्रेजेंट करते हैं, ज्यूइज्म। अब हजरत ईसा की बात जो बिगेस्ट रिलीजन ऑफ दिस टाइम यानी क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और याद करो ईसा इब्ने मरियम की वो बात जो उन्होंने कही थी, क्या बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तस्दीक करने वाला इस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है, और बिशारत देने वाला हो एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। इंजील में नबी सल्लम का नाम अहमद है, वो शख्स जो सबसे ज्यादा, देखिए कि मोहम्मद जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए और अहमद जो सबसे ज्यादा तारीफें करे, किसकी, अल्लाह की। उनके पास नाम तक मौजूद है, फिर कैसे ना अल्लाह के नबी को पहचाने। तासुब के ग्लासेस थे आंखों पे, इसलिए ना पहचान सके। हुआ क्या जब वो आए तो, मगर जब इनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आ गए तो उन्होंने कहा ये तो खुला जादू है, अब भला इस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, हालांकि इसे इस्लाम यानी अल्लाह के आगे सरे इताअत झुकाने की दावत दी जा रही हो। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं करता। ये लोग अपने मुंह की फूकों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह का फैसला कि वह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। ख्वाह काफिरों को ये कितना ही नागवार गुजरे, वही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इसको पूरे दीन पर गालिब कर दे, और ख्वाह मुशरिकों को ये बात बड़ी ही नागवार गुजरे। तीसरा मुकाम है इन आयतों पे, इसकी भी इंशाल्लाह तफसीर आपको भेजेंगे। क्या आज के दौर में लोगों की कोशिशें इस्लाम के नूर को बुझाने की और कुरान के नूर को ख़त्म करने की, लेकिन मुंह की फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। हम मुसलमान अगर इस चिराग की हिफाजत करने के लिए उठ जाए तो ये चिराग सिक्योर है। जब हाथ में आपके शम है तो आप उसके इर्द गिर्द एक ऐसी ढाल बना लें कि कोई इसको भूख से बुझाए ना। हाँ, आपकी भूख से ये बड़ी जल्दी बुझेगा, और आज भी यही है। जितना नाम निहाद मुसलमानों के नेगेटिव कमेंट्स और जुमलों की वजह से इस्लाम को नुकसान हुआ है, इतना कुफर की भूखों से नहीं हुआ। कल की भूख तो छोटी थी, आज की तो भूख ही बहुत बड़ी है। मीडिया, एक फूक मारते हैं इस्लाम के खिलाफ, पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। तो दुआ कीजिए कि आज इस गलबा इस्लाम के लिए हम कुछ कर सकें। आज के दौर में इस किताब के नूर को फैलाना, इस्लाम के नूर को बढ़ाना, और अल्लाह ताला में इसकी तौफीक अता फरमाए। अब आगे आयत बड़ी प्यारी है। हम सबको हमारी तबीयत के एतबार से पुकारा गया, क्योंकि इंसान की तबीयत में माल की मोहब्बत है, और माल बढ़ाने का बड़ा खूबसूरत तरीका तिजारत है। जॉब्स करने वालों के पास शायद उतना माल ना हो जितना तिजारत और कारोबार और बिजनेस करने वालों के लिए। तो अल्लाह ताला बाप को मुझे एक बिजनेस डील सिखाते हैं, हम देखते हैं हमारा भी इस पे जवाब क्या आता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुन्जीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, मैं बताऊं तुमको वो तिजारत जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा दे। ईमान लो अल्लाह और उसके रसूल पर, और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपनी जानों, अपने मालों से और अपनी जानों से। यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानो। क्या डील आई है, करना क्या पड़ेगा? क्योंकि जब कारोबार होता है तो सबसे पहले कहते हैं ना, कैपिटल क्या चाहिए, क्या लगाना पड़ेगा मुझे। अल्लाह ताला कहते हैं जान और माल। मिलेगा क्या इस डील के बाद, वो भी सुन लीजिए। पहली बात क्या था, ईमान लाकर अल्लाह और रसूल पर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी माल और जान के साथ। मिलेगा क्या, ज़ालिकुम खैरुल्लकुम इन कुंतुम तालमून, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। फरमाइए यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानो। तुम नहीं जानते कि माल जान लगाना बेहतर है, लेकिन ये बेहतर होगा। होगा क्या, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और अब्दी क्याम की जन्नतों में बेहतरीन घर तुम्हें अता फरमाएगा। और असल बात है ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये है बड़ी कामयाबी। सिर्फ यही मिलेगा, यानी क्या अल्लाह के दीन के काम करने से सिर्फ आखरत मिलेगी? नहीं, वह उखरा तो है बूनहा, और एक दूसरी नेमत भी देगा जो तुमको बड़ी पसंद है। और वो दूसरी चीज क्या है जिसको तुम पसंद करते हो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, वो है अल्लाह की तरफ से नुसरत और करीब ही में हासिल होने वाली फतह। अल्लाह ताला ने फतह खैबर की खुशखबरियां दे दी मुसलमानों को। वबशिरिल मोमिनीन, और ईमान वालों को बशारत दे दो। अब इसके बाद आखिरी आयतों को आप ये ना सोचिए कि ये हजरत ईसा अपने साथियों से कह रहे हैं, असल में तो ऐसे ही है। आपने हजरत ईसा की जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोचना है, और अंसार की जगह अपने नाम लिखने हैं। अल्लाह का नबी खड़ा आपसे कह रहा है क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारुल्लाह, ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह के मददगार बनो। जवाब लिखे अपने पास, मैं कैसे बनू अंसारुल्लाह, मैं अल्लाह की मदद कैसे करूं, उसको तो जरूरत नहीं। तो अंसारुल्लाह बनने के लिए अंसारुद्दीनुल्लाह बनना पड़ेगा। अल्लाह के रास्ते में मेरे मददगार बनो। ईसा बिन मरियम ने हवारियों से कहा, कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरा मददगार है? क्या पता चला कि नबी को भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है। अल्लाह का दीन एक शख्स से नहीं फैलता जब तक उसके साथ एक बड़ी टीम ना हो। जवाब सुन लीजिए, और हवारियों ने कहा, हम हैं अल्लाह के मददगार। इस वक्त बनी इसराइल का एक गिरोह ईमान लाया और दूसरे गिरोह ने इनकार कर दिया, फिर हमने ईमान लाने वालों की इनके दुश्मनों के मुकाबले में ताईद की। फसबहू ज़ाहिरीन, और वो ही गालिब होकर रहे। कितने लोग थे जिन्होंने हजरत ईसा की जिंदगी में लब्बाई कहा था इस पुकार पे? 12। 12 अंसारी थे सिर्फ, जो उस दौर के क्रिश्चियंस जो आप बने खुद को कहते हैं, यानी हजरत ईसा पर ईमान लाने वाले सिर्फ 12 लोग थे जिन्होंने कहा हजरत ईसा हम आपके मददगार हैं। आज दुनिया में क्रिश्चियंस कितने? अल्लाह अकबर, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन। और आज जो उनके दीन को फैलाने के तौर तरीके, जरा आप उसको भी तो सामने रखें। मिशनरी जील कहावत बन गया कि डू द वर्क विद मिशनरी जील। रातों को जागते, दिनों को जागते, आप देखिए जिनके पास हक नहीं है, बातिल है, सिर्फ एक मिथ है ना ट्रिनिटी के नाम की, वो ये काम कर रहे हैं। हम इस सच्चे दीन को फैलाने में क्या कर रहे हैं? खुद से पूछिए, अगर आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ जाए, क्या वो हजरत ईसा की तरह ये पुकार नहीं लगाएंगे, मन अंसारी लल्ला। मक्का से मदीना आए तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, कौन है जो मददगार है, क्यों अंसारे मदीना की इतनी शान है। आज तो तारीख ने वो ऐसे किरदार ही नहीं देखे उसके बाद कि जिन्होंने अपने घर में दूसरों को शामिल कर लिया। अंसार ने मुहाजरीन को पनाह दी, ऑफर्स दे दी कि मेरी एक बीवी को मैं तलाक देता हूं, तुम शादी कर लो। क्यों? क्योंकि इतनी कम औरतें थी उस वक्त मुसलमानों की। इतना भी कुछ जज्बात को समझता है, इमोशनली सेक्रीफाइस किया कि मेरी दो हैं और मेरे मुसलमान भाई के पास एक भी बीवी नहीं, हो सकता उसको उसकी हाजत हो, चलो मैं छोड़ता हूँ तुम ले लो। और ये वो बीवियां नहीं थी कुछ जिनसे झगड़े चल रहे थे, डिवोर्स फाइल हुई हुई थी, वो मन चाहती बीवियां। तो ये भी नहीं कहा कि जो मुझे नहीं पसंद वो दे देता हूँ, कहा तुम्हें जो पसंद है मैं उसको छोड़ता हूँ। ये जज्बे कहाँ से आते हैं? ये जज्बे तब आते हैं जब दीन की रूह अंदर जाती है। हम ठंडे, हम सुन, हम कहते हैं छोड़ो दो नफिल और ना पढ़ ले। दर्स की महफिल में मैंने देखा औरतें कुरान पढ़ रही होती हैं, क्यों इस पारा पूरा कर ले जल्दी से। दर्स की महफिल छोड़ के लोग नमाजें पढ़ने चले जाते हैं कि हम नफिल पढ़ें जरा दो चार। इतना ठंडा दीन, ऐसे मुसलमान दुनिया में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए कोई हुज्जत ना बना दे ऐसी जो कल क्यामत के दिन हमें नबी सल्लम के सामने शर्मसार कर दे। आज भी यही हालात है उम्मत मुस्लिमों के, बैठे हुए कायदून, हालांकि अल्लाह की मदद कायदून के साथ नहीं आती, साबिक उनके साथ आती है। आज भी वो कुफर को फैलाने में देखिए कितने ऑर्गेनाइज हैं, हम इस्लाम को फैलाने में ऑर्गेनाइज नहीं है। आज उनकी मजहब की तालीम लाजिम है कुछ जगहों पे जहां वो अपने दीन को फैलाते हैं, और आज हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को बना रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि सहाबा में और हम में यही फर्क है, हम खुद सास हैं, खुद को बना रहे हैं, वो तारीख सास थे। सहाबा ने तारीख बनाई कि तारीख का हिस्सा ही बन गए। आज हम अपनी जात से ही ऊपर नहीं जाते, इसलिए हमें इस ऑनर की भी कोई परवाह नहीं जो हमें मिली हुई है। जरा दीन की तरफ आए तो सही घरों में आवाजें शुरू हो जाती हैं, निगलेक्ट हो रहा है घर, निगलेक्ट हो रहा है, बच्चे शौहर सारे हमसे हक लेने आ जाते हैं। आज मर जाएंगे हम तो भी तो ये निगलेक्ट होंगे। आज आप देखिए कि सबको ये तो दिखता है कि दुनिया की तालीम के लिए कितनी एफर्ट्स की जरूरत है, घरों के नक्शे तो देखिए जिस वक्त हम अपने बच्चों को जाते हैं स्कूलों में छोड़ने, लेकिन दीन के लिए हमारी नजर किधर है? आज हिदायत का नूर पाने की तड़प ही नहीं हमारे दिलों में, दिलों में बस ये कुरान पढ़ ले, हिफ्ज कर ले, पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, तो हाफिजों वाली उम्मत दुश्मनों की चालों से नहीं बचती। कभी शैतान नहीं बुरा कहेगा आपको हाफिज बनाने पे, बनने पे, उसको होता है पढ़ने तो लफ्जों का ही हाफिज है ना, ये कौन सा किरदार का बन जाएगा, इल्ला माशाल्लाह। लेकिन जब आप कुरान को समझते हैं, कुरान की रस्सी से जुड़ते हैं, फिर पता लग जाता है अल्लाह अकबर ये क्या होने लग गया और किधर किधर क्या करेंगे। तो जरूरत है इस बात की कि आज हम अपने आप को बेकर रखें। हमारी जिंदगी चंद दिन की रह गई है, आज हैं कल नहीं रहेंगे। ये डिग्रियां ना कब्र में काम आएंगी ना क्यामत के दिन काम आएंगी। हम सबको एक ऐसी डिग्री की जरूरत है कि जो कब्र में हमारे साथ रखी जाएगी तो कम अज कम शहादत की मौत तो बन जाएगी, क्योंकि हदीस में आता है कि जो इल्म के रास्ते में मर गया वो शहीद है। इसी सोच के साथ तिलावत सुनते हैं आयत 10 से 14 तक, और खुद से अल्लाह से नियत करें, खुद से कहिए ये सूरत सफ मुझसे क्या तकाजे करती है, मुझे अपने आप से कुछ कमिटमेंट्स लेनी है, इंशाल्लाह अल्लाह पूरी भी करवा देगा।
وتجاهدون
تلاوت سنتے وقت کدھر نظر گئی آپ کی؟ میں آپ کو اپنا بتاؤں، آخری لفظ پہ فس بہو ظاہرین، اور وہ غالب آگئے. کیسے غالب آئے؟ جب انہوں نے نبی کی پکار پہ لبیک کہا.